Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو کل کی کلاس میں ہم نے ان آیات کا خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کر لی تھی، اور آج ہم معارف و مسائل پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. پیج نمبر 277 کے اوپر، معارف القرآن جلد نمبر 3 سے. تو معارف القرآن، سوری، معارف و مسائل ان آیات کی، اس کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ مکرمہ میں اس طرح نازل ہوئی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے. ائمہ تفسیر میں سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قلبی رحمۃ اللہ علیہ، قطادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی تقریباً یہی قول ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی مختلف صورتوں کی اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہے نا وہ خصوصیات بتائیں، فضائل بتائے، تو وہ جہاں کہیں سے مفسرین کو ملتے ہیں، حدیثوں سے ملتے ہیں، تو وہ پھر ان کو نقل فرما دیتے ہیں. تو سورہ انعام کی خصوصیت پر جو ہے وہ یہ والی حدیث ملی کہ یہ ایسی شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ پوری کی پوری، تقریباً ساری آیات نہیں لیکن زیادہ تر اس کی جو آیات ہیں وہ بیک وقت نازل ہوئیں. ایک وقت میں نازل ہونا جو ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی صورتیں یا تو ایک وقت میں نازل ہوئیں، سورہ فاتحہ ایک وقت میں نازل ہوئی، ایک ساتھ بڑی صورتیں جو ہیں وہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں. سورہ انعام جو ہے یہ بہت بڑی صورت ہے، تو اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دوسری بڑی صورتوں کی طرح سے تصور یہ ہوتا کہ یہ بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں بیک وقت اس طرح سے نازل ہوئی، اور اس کے باقاعدہ جو ہے نا وہ یعنی ایک دربار لگا اس کے لیے 70,000 فرشتوں کا. اور 70,000 میں وہی بات ہے کہ لفظ جو 70 کا جو عدد ہے تو یہ عربی زبان کے اندر بہت بڑی تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 70,000 سے زیادہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتی ہے اس مطلب ہے. آگے لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق اس اسفرائینی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے. توحید کے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. واحد ایک وہی ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اس کے جو اصول و قواعد یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پھر اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرما دی ہیں. اس سورت کو کلمہ الحمدللہ سے شروع کیا گیا جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کل الحمدللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر ہر قسم کی تعریف کا استيعاب ہے، جمع ہے اس کے اندر. تو अल्हम्दुलिल्लाह से इस सूरत को भी नाजिल किया, जैसे कि सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से शुरू किया। और मुराद इस खबर से लोगों को हम्द की तालीम देना है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की तालीम देना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ के काबिल हैं, तो तुम क्यों नहीं तारीफ करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की तारीफ यानी तुम्हें अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत नेमतें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हदीस जिसका क्या मफहूम बनता है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उसकी उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजल फरमाई है, ठीक है, और उसके आगे ये भी फरमाया है कि मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करते हैं। सही है, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का क्या तरीका है जो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल ने बताया, और वही सबसे बेहतर सबसे सही चीज़ बता सकते हैं ना हमें, ठीक है, अल्लाह ताला के बारे में और अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए ये कौन और बताएगा। हम अपनी अकल से इन बातों तक अगर पहुंच सकते तो फिर नबी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम नहीं पहुंच सकते इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने हमारी अकल को इतनी सलाहियत नहीं दी, ठीक है, इतनी सलाहियत नहीं दी, तो जो नहीं दी तो उसको फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कॉम्पनसेट करते हैं ना, तो नबी के ज़रिए से उस कमी को जो है वो पूरा फरमाया, कॉम्पनसेशन फरमाई, तो नबी ने आकर के बताया ना कि कैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी है। तो अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका क्या बताया है कि अल्लाह की नेमतों पे गौर करो कि जो तुम्हारे ऊपर उसने नाजिल करी है, ठीक है, तो इसको हम अंग्रेजी जुबान में अगर कहें, हम अंग्रेजदान किस्म के लोग, राइट, तो लुकिंग एट द पॉजिटिव्स, राइट, जो मुस्बत बातें हैं जो हमारे पास अनगिनत मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको देखो, उनकी तरफ तवज्जो करो और उनको समझने की कोशिश करो, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। मनफी की तरफ देखोगे तो मनफी जो है वो उनकी तादाद ही बहुत कम होती है मुस्बत के मुकाबले में, ठीक है, लेकिन जब किसी चीज़ को आप देखना शुरू कर देते हैं ना तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, वो चीज़ उजागर हो जाती है और आपके जहन के अंदर जो है ना वो चीज़ बड़ी बन जाती है, बल्कि शैतान बड़ा बना देता है, वो खुद से नहीं बन जाती बड़ी, शैतान उसको बड़ा बना देता है, तो छोटी चीज बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन बड़ी चीज की तरफ अगर आप नहीं देखते तो फिर वो छोटी बन जाती है। हमारे मशायख हमारे हजरत अक्सर ये जुमला अपने बयानात में फरमाते थे कि इंसान जिस रास्ते पर चलता है ना तो उस रास्ते की कंकरियां भी नजर आती हैं उसको, जाहिर सी बात है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं और देख रहे हैं अपने रास्ते को तो पत्थर भी पड़ा हुआ है, कंकर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज पड़ी है वो आपको नजर आएगी ना, राइट, कौन सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड बात है। लेकिन जिस रास्ते पर वो नहीं चलता उसके पहाड़ भी उसको नजर नहीं आते। तो इसी बात को अगर हम हम्द के अंदर ट्रांसलेट करें तो इंसान नेमतों को देखता है तो छोटी छोटी नेमतें भी उसको नजर आती हैं, बड़ी बड़ी नेमतें भी उसको नजर आती हैं, यानी शुक्र के रास्ते पर चलता है। जब इंसान शुक्र के रास्ते पर चलता है तो उसको छोटी बड़ी हर किस्म की नेमतें नजर आनी शुरू हो जाती, लेकिन जब शुक्र के रास्ते पर नहीं चलता, डिनायल के रास्ते पर चलता है, जिसको कुफर कहते हैं अरबी में, जब कुफर के रास्ते पर चलता है, डिनायल के रास्ते पर चलता है, तो फिर उसको बड़ी बड़ी नेमतें भी नजर नहीं आती हैं। जब कोई औरत होती है वो कुफर के रास्ते पे चलती है ना, यानी शिकायत के रास्ते के ऊपर, शिकवे के रास्ते के ऊपर, तो उसके घर के अंदर उसकी औलादें मौजूद हैं वो उसको नजर नहीं आती, औलादें सेहतमंद हालत में मौजूद हैं वो उसको नजर नहीं आता, उसके सर के ऊपर उसके शौहर की जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए, दफ्तर जाता है और घंटों की ड्राइव करता है और जो भी दिमागी काम करता है या जिस्मानी काम करता है वो उसको नजर नहीं आता, राइट, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें उसको नजर नहीं आती, और जो शिकवे शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके पास तो कोई नेमत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें और परेशानियां इसकी जिंदगी में, राइट। उसी तरह ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, क्योंकि औरतों की कसरत होती है क्लास में तो ज्यादा मिसाल औरत की दे देते हैं, वरना मर्दों का भी यही हाल, राइट, जो मर्द जो है वो कुफर के रास्ते पे चलता है बड़ी बड़ी नेमतें उसको नजर नहीं आ रही होती। तो रास्ते का इख्तियार करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इख्तियार दिया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, राइट, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इल्हाम फरमाया है, ठीक है, फुजूर और तक्वाहा, ठीक है, इस नफ्स का। अब हमारे ऊपर, हमारे पास इख्तियार है, ठीक है, कि हम जो है वो कौन से वाले को, रास्ते को इख्तियार करें। शुक्र के रास्ते को इख्तियार करेंगे, दुनिया की जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत में भी जन्नत मिल जाएगी। और कुफर के रास्ते को इख्तियार करेंगे, दुनिया की जिंदगी भी हकीकी जहन्नुम बन जाएगी। ऊपर से कितना ही उसके अंदर जो है ना वो माल असबाब नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर जो है ना वो जहन्नुम ही जहन्नुम होगी, और मरने के बाद भी इसने जहन्नुम में जाना है, ठीक है। तो हम्द, राइट, ये है अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह की नेमतों के जरिए से अल्लाह ताला की। यही तरीका बच्चों को अल्लाह ताला से मुतारिफ कराने का, बच्चा पैदा होता है आपकी गोद में होता है, आप ही के सामने जो है वो सुनना सुनता तो वो खैर बहुत पहले से है, लेकिन सुनता है सुनता है सुनता है, आप ही के जरिए से वो बात करना शुरू करता है, आप ही के जरिए से जो है वो चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि ये फलानी चीज है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, इससे बचना है, इससे नहीं बचना है। माँ बाप बताते हैं ना ये सारी चीजें, उर्दू सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, राइट, बच्चा पैदाइशी तौर पर तो नहीं सीख करके आया होता, तो यही माँ बाप अल्लाह से उसको क्यों नहीं मुतारिफ करवाते। और अगर करवाने का किसी को दिल में ख्याल भी आए कि हाँ करवाना है, तो अब समझ में नहीं आता कैसे करवाएं, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, अल्लाह तो सामने है ही नहीं, अल्लाह ताला को हमने ना देखा तो हम बच्चों को क्या दिखाएं, अल्लाह ताला को कैसे दिखाएं अल्लाह ताला को। नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अल्लाह की नेमतों के जरिए से अल्लाह ताला की तारीफ करवाओ, खुद करोगे तो करवा भी सकोगे। तो अब माँ बाप का क्या काम है कि जो नेमतें उसके पास मौजूद है, पहले तो खुद देखें ना नेमतों को, जो माँ या जो बाप अपने पास अल्लाह की मौजूद नेमतों को खुद नहीं देख पाता, वो क्या अपने बच्चों को दिखाएगा कि देखो हमारे पास ये नेमत भी है, देखो हमारे पास ये नेमत भी है, और ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। वो तो खुद ही नहीं देख रहा, वो तो खुद ही जो है वो शिकवे शिकायत, और खुद ही जो है ना वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और टेंशन और हर वक्त जो है वो इस तरह के मसलों के अंदर फंसा हुआ है, तो बच्चों को भी वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता ना फिर, ठीक है। तो बच्चे की अच्छी तरबियत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब अपनी जो है वो हुदूद अरबा जो है वो ठीक ना हो, सही है। तो अपना हुदूद अरबा शुक्र के रास्ते पे चलेगा तो फिर औलाद को भी शुक्र के रास्ते के ऊपर चला सकेंगे, अल्लाह की नेमतों का पता रखेंगे, देखो बेटा देखो बेटी मेरे पास जो कुछ है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने हमारे साथ कितना अच्छा मामला किया है, राइट, ये सब अल्लाह का है। तो अब बच्चा जो है ना वो अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, यही तो करेगा फिर उसके बाद, अल्लाह से मोहब्बत करेगा ना या करेगी ना, ठीक है। तो हम्द जो है ना ये इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा, इसके बगैर हमारी नस्लों में ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई सवाल हो या कोई एतराज हो तो पूछ लीजिएगा चैट विंडो के ऊपर। मर्दों में लिख रहे हैं कि पेज इज नॉट शेयर्ड, कल भी लिखा था, पता नहीं क्या हो जाए इसकी। खैर, तो कोई हम्द करे या ना करे अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जाती कमाल के एतबार से खुद ब खुद महमूद है, ठीक है। एक हमारे बहुत 25 साल पहले की तकरीबन बात है, हमारे एक दोस्त जो है ना अमेरिका में रहते थे, तो हमारे बल्कि मेरे उस्ताद ही थे, अदद के खलीफा भी थे, डॉक्टर हुसैन सत्तार साहब, बड़े आजकल दुनिया में उनकी किताब एक मशहूर हुई भी है। तो वो ना उस जमाने में वो अपने बीवी बच्चों को जो है ना वो लेकर के गए हवाई, ठीक है। हवाई जो है ये अमेरिका का एक एक स्टेट है और पैसिफिक ओशन के अंदर है, बिल्कुल ना बहुत दूर है वो अमेरिका से, लेकिन वो कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर बहादुर ने, अमेरिका बहादुर ने। बहरहाल तो वहां पे जाते हैं हॉलीडेज मनाने के लिए, तो वो हवाई गए ना तो वहां से वापस आकर के बताने लगे कि हमने ना वहां पर स्नॉर्कलिंग करी। स्नॉर्कलिंग कहते हैं कि आप जो है ना पानी के अंदर जो है ना वो डाइव लगा करके चले जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्विम सूट और ये सब पहन करके, ऑक्सीजन इक्विपमेंट, तो वहां पे लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं और नीचे जा करके जो है ना वहां पे यानी अल्लाह ताला की मखलूक को देखते हैं, ऐसी ऐसी मछलियां, ऐसी ऐसी खूबसूरत जो है ना वो चीजें अल्लाह ताला ने वहां पे बनाई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया तो मेरे दिल में बात आई कि चलो इंसानों ने स्नॉर्कलिंग वगैरह जो है ना ये तो अभी शुरू करी है ना, तो दुनिया तो बनी हुई है, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो है वो करोड़ों अरबों सालों पहले से बनाई हुई हैं, जब से भी बनाई हुई है बहुत लंबे अरसे से बनाई हुई है ना, कौन देखता था इन चीजों को पहले, कौन देख करके इनकी तारीफ करता था जो अल्लाह ताला की इतनी हसीन मखलूक समंदर के नीचे रहती है। ठीक है ना, अभी तो 20वीं सदी के अंदर लोगों ने नीचे जाकर के थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया है ना, तो हाँ अभी लोग देते हैं यार क्या जबरदस्त कितनी प्यारी प्यारी चीजें। इतनी खूबसूरत इतनी बेहतरीन तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, कोई देखने वाला नहीं। बज़ाहिर हम कहते हैं हम तो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, इंसान तो देख नहीं सकता, तो इंसान तो कोई तारीफ नहीं करता था क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तो इस आजिज़ के दिल में यही ख्याल आया कि अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है हमारी तारीफ की, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको के ऐसी चीजें कुछ तो हमने अभी देखनी शुरू करी है, कुछ तो हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक होता है ना कि भाई कोई बंदा कोई अच्छी सी चीज बनाता है तो कहते हैं हाँ भाई लोग देखें जरा मेरी जो है ना वो एबिलिटीज की तारीफ करें और मेरी जो है ना वो चीजों की बारे में अच्छा ओपिनियन दें मुझे। जैसे हम वो व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज भेजते हैं, हमने मैंने गलती से एक दफा मैंने लिख दिया था कि वो रमजान के शुरू में कि औरतों की तरफ से लाइक्स आ रहे हैं, मर्दों की तरफ से एक भी लाइक नहीं आया, वो फास्टिंग और फीस्टिंग वाले मसले के ऊपर। ठीक है, तो वो तो उस मसले के लिए खाली कहा था फास्टिंग और फीस्टिंग के ऊपर, लेकिन अब जो है ना वो सारे माशाल्लाह मर्द हजार जो है ना बाहर मैसेज के ऊपर हार्ट्स आ रहे हैं तो लाइक्स आ रहे हैं तो ठेंगे आ रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। भाई हमारा ये मकसद नहीं था कि अब आप हर मैसेज को जो है ना वो लाइक करें, अब आप कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, अलहमदुल्ला हम कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह नहीं रहा था कि आप ये काम किया करें। ठीक है ना, हमने तो खाली फास्टिंग और फीस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में तो ये बात नहीं है कि लोग लाइक किया करें, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर यही होता है ना कि कोई चीज कोई बंदा लिखता है तो कहता है यार आगे से अच्छा रिस्पांस भी आना चाहिए, आगे से लाइक्स भी होने चाहिए, आगे से जो है ना वो अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए, रिएक्शंस बना दिए व्हाट्सएप वालों ने, इतने सारे फेसेस, तो पता नहीं कोई रोने धोने का फेस है तो कोई हंसने का फेस है तो कोई किसका फेस है, बिकॉज पीपल वॉन्ट रिएक्शन। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जरूरत नहीं है हमारी रिएक्शन की। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाहुस्समद बेनियाज है, राइट, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को नहीं जरूरत हमारी किसी भी तारीफ की या इबादत की या दुआ की या किसी भी चीज की। ठीक है, चाहे यहाँ किसी ने लिखा है कि छोटे बच्चों को अल्लाह ताला से डराया भी जा सकता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं डराया जा सकता, नहीं डराया बिल्कुल भी अल्लाह ताला से। खैर बहरहाल आपने आगे क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। जैसे मेरी बेटी अपने छोटे भाई को बहुत परेशान करती है, उनको हर तरह से समझा लिया प्यार से, टाइम आउट देकर, डांट से, लेकिन उनको समझ नहीं आती, तो अब ये ही समझ आया है कि उनको बोलूं कि अल्लाह ताला पूछेंगे आपसे, वो सब देख रहे हैं, क्या ये करना ठीक है? ये अल्फाज की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, मतलब अल्लाह ताला देख रहे हैं, देखिए हम नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, सही है। तो इस तरह तक बोलना, ये तो नहीं कहूंगा कि आप उनको डरा रही हैं अल्लाह ताला से। देखें पहला करने का काम जो होता है ना वो ये होता है कि आप अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह ताला की जो है ना वो यानी मुतआरिफ करवाएं अल्लाह ताला को बच्चे के सामने। ठीक है ना, जब बच्चे के जहन में अल्लाह ताला की एक अहमियत बन जाएगी, राइट, तो फिर उसके बाद ये बात कहना कि देखें अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, वो फिर आपसे पूछेंगे ना कि आपने क्यों किया था, अपनी बहन के साथ ऐसा मामला है, अपने भाई के साथ ऐसा मामला, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपकी बात की वैल्यू होगी, फिर उसके ऊपर असर होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहमियत है ना। ठीक है, तो इस तरतीब में इस तरह से बात करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, लेकिन डराने का लफ्ज उमूमन तो हम जो है ना वो जैसे वो बुड्ढे बाबा से डराते हैं, जिस तरह जो है वो नाउज बिल्ला कोई और गंदी चीज से डराते हैं, डरावनी चीज से डराते हैं, उस तरह से तो बिल्कुल भी अल्लाह ताला से बच्चों को हरगिज हरगिज डराने की कोशिश ना करें कोई। ठीक है, जहन्नुम से डरना है तो खुद डर जाए, बच्चों को अभी नहीं डरना है, बच्चे छोटे बच्चे जो है ना वो अभी इसके लिए नहीं है, अभी उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने की सारी कोशिशें करें। एनीवे आगे फरमाते हैं कि इस जुमले के बाद आसमान और जमीन और अंधेरे उजाले के पैदा करने का जिक्र फरमाकर उसके महमूद होने की दलील भी बता दी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो महमूद है, हम्द के काबिल है, हम्द के लायक है, डिजर्विंग ऑफ ऑल द प्रेज, तो उसकी दलील बता दी कि जो जात इस अजीम कुदरत और हिकमत की हामिल है, वही हम्द व तारीफ की मुस्तहिक हो सकती है। राइट, क्या अजमत है अल्लाह ताला की कि उसने ऐसी तख्लीक करी है। ठीक है, ये भी तो अल्लाह ताला की नेमत है। देखें, आगे भी बात आ रही है और अभी जहन में बात आई तो भी कि सूरज, अब बजाहिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेमतें हैं वो तो वो पैसा जो हमारे पास है वो हमारी नेम हमारे ऊपर अल्लाह की नेमत है, औलाद है वो अल्लाह की नेमत है, घर है, गाड़ी है, ये अल्लाह की नेमत है। सूरज, सूरज से हमें क्या काम? राइट, सूरज तो है, ठीक है, बना दिया है, लेकिन सूरज अगर ना होता तो क्या मेरा घर चल सकता था? क्या मेरी जिंदगी जो है वो सेहतमंद रह सकती थी? क्या मेरी औलादें जो है वो ऐसे अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी अगर अल्लाह सूरज ना बनाते? तो सूरज सिर्फ ये नहीं है कि सूरज जो है वो प्लैनेट अर्थ को जो है वो कायम करने के लिए तो मैनू की है मेरा क्या ऐसे नहीं, मेरे ऊपर डायरेक्टली भी तो सूरज एक नेमत है ना अल्लाह ताला की, मेरी औलाद के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत जो है वो सूरज भी तो है। ठीक है, दिन भी तो है, रात भी तो है। ठीक है, तो इनडिफरेंट नहीं हो सकते हम इन नेमतों से, ये नेमतें भी डायरेक्टली हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, तो हम्द और तारीफ के मुस्तहिक यही जात है जिसने कि छोटी यानी जो हमारे से क्लोज नेमतें हैं वो भी अल्लाह ही ने बनाई, जो हमसे बजाहिर दूर नेमतें हैं वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें। इस आयत में समावात को जमा और अर्द को मुफरद जिक्र फरमाया है। देखें, ये जो फरमाया था ना हमारे बुजुर्गों ने, कैसी कैसी माशाल्लाह मोतियां हमारे लिए जमा कर दी हैं कि ये सूरत तौहीद के तमाम उसूलों कवायद पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो अब तौहीद का मतलब हम समझते हैं कि कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, बस दैट्स इट, तौहीद इज फिनिश्ड, खत्म हो गई तौहीद की बात। नहीं, तौहीद में ये भी तो शामिल है कि हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह का तस्करा आए चला जा रहा है, अल्लाह की बातें हुई चली जा रही हैं। राइट, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ये तौहीद नहीं है? तो देखें, इस सूरत की पहली आयत के अंदर हम मुस्तकिल अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो तौहीद के तमाम उसूलों कवायद के ऊपर मुश्तमिल कितनी हीरे मोतियों वाली बात मशायख ने फरमाई। इस आयत में समावात को जमा और अर्थ को मुफरद जिक्र फरमाया, सिंगुलर और यानी उसको प्लूरल, इसको जो है वो सिंगुलर। अगरचे दूसरी आयत में आसमान की तरह जमीन के भी साथ होने का जिक्र मौजूद है, जैसे अल्लाहुल्लज़ी, एक और मैंने आयत अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया तो निकाल दी थी कि अल्लाहुल्लज़ी खलक सबअ समावातियुं व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, कि अल्लाह वो है कि जिसने सात आसमानों को तख्लीक किया और अर्थ को उसके जैसा। ठीक है, यानी जैसे सात आसमानों को तख्लीक किया वैसे ही जमीन को भी जो है वो सात तख्लीक किया, मिसलहुन्ना से ये पता चलता है। ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं कि अगरचे दूसरी आयत में आसमान की तरह जमीन के भी साथ होने का जिक्र मौजूद है, शायद इसमें इस तरह इशारा हो कि सात आसमान अपनी हैयत व सूरत और दूसरी सिफात के एतबार से बाहम बहुत इम्तियाज रखते हैं। ठीक है, यानी सात आसमानों के जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है और उनके अंदर जो जो यानी जिस जिस तरह से वो बने हुए हैं और जो चीजें उनके ऊपर मौजूद हैं, पहले के ऊपर कुछ चीजें हैं, दूसरे के ऊपर कुछ और चीजें हैं, तीसरे के ऊपर कुछ और चीजें हैं। ठीक है, इतनी तफसील तो हमारे पास नहीं है, या हो सकता है मशाइख ने कहीं लिखी हो, लेकिन हमें कम से कम इतना तो पता है ना मेराज के सफर के अंदर कि पहले आसमान के ऊपर आदम अलैहि सलाम है ना, अल्लाह ताला की खुसूसी मखलूकात, अशरफुल मखलूकात में से आदम अलैहि सलाम जो है ना वो पहले आसमान के ऊपर है, दूसरे के ऊपर जो है वो ईसा अलैहि सलाम और यहया अलैहि सलाम, तीसरे के ऊपर हारून अलैहि सलाम, या शायद नहीं हारून अलैहि सलाम शायद पांचवें के ऊपर है। एनीवे, तो ये इख्तलाफ है यानी इम्तियाज है ये हर आसमान का। ठीक है, तो आसमान जो है ना वो अपनी हैयत और सूरत और दूसरी सिफात के एतबार से बाहम बहुत इम्तियाज रखते हैं, इंडिविजुअल उनकी अपनी अपनी एक, और सातों आस और जमीने, सातों जमीने एक दूसरे की हम शक्ल और मिसल हैं, इसलिए उनको मिसल एक अदद के करार दिया गया। यानी इस वाली आयत के अंदर जो उनको सिर्फ एक जमीन करार दिया ना, तो शायद उसकी वजह यह है कि वो हम शक्ल और हम मिसल है। ठीक है, तो ये यानी ये एहतमाली दर्जे में, ना तो आसमानों की तफसील जो है वो बहुत ज्यादा हमें पता है, ना जमीनों की तफसील जो है वो बहुत ज्यादा हमें पता है। ठीक है, अब इस जमाने के अंदर, अब चूंकि साइंस और ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा इंसान ने मेहनत करी है, तो अल्लैस अलिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह ताला का भी उसूल है कि इंसान जिस चीज के ऊपर मेहनत करता है ना, तो वो उसको वो दे दी जाती है, उसके लिए वही चीज होती है जिसके लिए उसने मेहनत करी। तो अब मेहनत करी है मादे के ऊपर और टेलीस्कोप्स के ऊपर और दूसरे साइस्मिक इक्विपमेंट के ऊपर, तो फिर आगे से तफसीलात भी जो है वो अल्लाह ताला ने खोली है। तो अब आसमानों के ऊपर जो है वो, एक तो ये है कि जी अगर आप उसको सिर्फ एटमोस्फेयर करार दें इन आसमानों को, तो हमारे जो 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 एटमोस्फेयर है उसके लेयर्स होती हैं, एक लेयर इतनी मुख्तलिफ होती है, ट्रोपोस्फेयर है, फिर आइकोनोस्फेयर है, आइजोनोस्फेयर है, ना एक्सोनोस्फेयर है, पर अब बच्चों को पढ़ाया था तो उस वक्त तो याद हो गई थी, अब फिर भूल गया हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे स्फेयर्स हैं और हर स्फेयर जो है वो दूसरे स्फेयर से कितना मुख्तलिफ है, ये आसमानों की इम्तियाजी सूरत हाल, अगर जो है वो आप इनको एटमोस्फेयर खाली करार दें, वरना ऊपर के जो है वो तो वहां तक तो हमने, यानी हमारा कोई इंसानों का कोई जो है वो वॉयजर और एक्सप्लोरर कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा अभी तक जो है, पता नहीं ज्यादा से ज्यादा सैटर्न के करीब पहुंचे। लेकिन जमीन के बारे में, कि जमीन के नीचे क्या है, तो अब उसके बारे में जो है ना, वो आपने बहुत सारी फिगर्स देखी होंगी साइंस की बुक्स के अंदर, कि जी मेंटल होता है और कोर होता है और आउटर कोर और इनर कोर और अर्थ क्रस्ट जो है वो इतना है वगैरह, ये सारी की सारी जो है ना, ये एहतमाली दर्जे में कोई नीचे तक जा नहीं सका है। ड्रिलिंग भी जो उन्होंने मैक्सिमम करी है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ क्रस्ट के ही एक तह तक पहुंची है, उसके नीचे की जो लेयर है उसके अंदर तो ड्रिलिंग ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जो है ना वो बस वो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स जो डेवलप करी हुई है, तो उसके अंदर डालते रहते हैं अपने वेरिएबल्स और जो है वो निकाल निकाल करके साइंस की किताबों को भरते रहते हैं। ठीक है ना, आखिर कुछ पढ़ाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, आखिर तस्वीरें शस्वीरें बनाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। बहरहाल, तो ये सब एहतमाली दर्जे में, तो साइंसदानों को जो है वो कोई इसका इल्म नहीं है इन फिजिकल, यानी अर्थ की एक्चुअल जो तफसील है साइंसदानों को नहीं पता, तो मौलवी आजाद का तो वैसे भी ये शोभा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी ये चीज़ हमारे सामने खुली भी नहीं है कि ज़मीनें हम शक्ल और हम मिसल हैं या मुख्तलिफ हैं या कैसी हैं, वी डोंट नो। ठीक है, एक एहतमाल में कह दिया कि भाई यहाँ पे सिंगल सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल करने की शायद यही बचाओ। अच्छा, अब आपने बच्चियों के आजकल सवाल आ रहे हैं, अगर छोटी बच्ची मेकअप की जिद करे जबकि मैं नहीं करती मगर उसकी फूफी और लोग करती हैं, तो ऐसे में कैसे समझाऊं कि नेल पॉलिश ना लगाओ, लिपस्टिक ना लगाओ। तने आपका सवाल जो है वो है तो बिल्कुल मौजू से हट करके, लेकिन अच्छा हुआ आपने कर लिया, तो उसके बाद जवाब के बहाने जो है ना वो एक बात जहन में आ गई जो कि शायद दूसरे लोगों को भी शायद पहली दफा सुनने को मिल रही हो, कि बच्चों के बारे, आपके सवाल के जवाब कि छोटी बच्ची जो है ना वो फूफी को देखती है। ठीक है, तो अब बच्चों के ऊपर माहौल का असर होता है। ठीक है, तो एक बहुत अहम काम ये होता है कि बच्चों को जो है ना वो ऐसे माहौल से बचाने की मेहनत की जाए। ठीक है, अब वो कैसे आपने फूफी से उनको बचाना है, तो ये काफ़ी फिर बात तक लंबी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और मौजू बिल्कुल हमारा चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ यही बात याद दिला देता हूँ, अगरचे कि मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी वो क्लासेस ली थी, लेकिन एज अ रिमाइंडर एंड फॉर अदर्स कि मिसाली माँ की जो क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है ना, मिसाली माँ, उसके अंदर इन डिटेल्स को जो है वो हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। यानी सिर्फ मैंने वन साइडेड लेक्चर्स नहीं दिए, हजरत की किताब पढ़ी है, उसको एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं जिनके अंदर इस किस्म के सवाल शामिल थे। मुझे अभी तक याद है कि इस किस्म के सवाल जो है ना, कि बच्चों को कैसे बचाएं और मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए वगैरह, ये सारे उसके अंदर कवर हो चुके हैं। तो उन लेक्चर्स और उस किताब को जो है ना वो घोल के पी जाएं। अब वो किसी को कहा था घोल के पी जाएं, तो उन्होंने वाकई जो है ना पेज फाड़ करके जो है ना उनको घोलना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कीजिएगा। ठीक ठीक है, घोल के पी जाने का मतलब यह है कि अच्छे से उसको सुने, नोट्स बनाएं, समझने की कोशिश करें, तकरार करें और अमल में लेकर के, ठीक है। तो मिसाली माँ के जो लेक्चर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर अब पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत तफसील के साथ हम मुस्तकिलन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ज़ुलुमात को जमा और नूर को मुफ़रद ज़िक्र फरमाने में इस तरफ इशारा है कि नूर ताबीर है सही राह और सिरात मुस्तकीम से, यानी नूर का लफ्ज़ जो है ना, वो ये फिजिकल लाइट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ कि बल्ब जला हुआ है उसके अंदर से नूर निकल रहा है, बल्कि सही राह और सिरात मुस्तकीम, ये मुराद है यहाँ। और वो तो एक ही है, सिरात मुस्तकीम तो एक ही है, और ज़ुलुमात ताबीर है गलत रास्ते की, और वो हजारों रास्ते हैं, ठीक है। जैसे मक्का मुकरमा जाने के लिए जब आप गाड़ी पे जाते हैं तो एक हाईवे होती है जो कि मक्का मुकरमा जाती है रियाद से, ये नहीं होता कि आप जो है वो कभी इस रास्ते इस हाईवे पे चले गए तो भी मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे, उस हाईवे पे चले गए उधर से भी मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे, इधर चले गए उधर से भी मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे, नहीं, एक हाईवे बनाइए वही जाती है, ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा की भी एक ही हाईवे है माशाल्लाह, है उस हाईवे से हमें बड़ी मोहब्बत है इसी वजह से कि वो मदीना तैयबा में पहुंच करके खत्म होती है, फिर वहां से आप राइट टर्न मुड़ते हैं और फिर आपको मस्जिद नबी सामने आ जाती है, ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त शारे मलिक फहद, तो एक ही, ठीक है, जबकि गलत रास्ते यानी मंजिल तक ना पहुंचाने वाला रास्ते उनकी कोई लिमिट ही नहीं है कोई, ठीक है ना। आप यानी 1 डिग्री के एंगल के ऊपर आप गलत रास्ते ले लें तो भी आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप अपने 3 डिग्रीज जो है वो सीधे रास्ते से आप मुड़ जाएं, सिर्फ 3 डिग्री का फास्ट ऑफ, फिर भी आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, राइट। और आप 90 डिग्रीज मुड़ जाएं तो आप बिल्कुल ही जो है वो उस तरफ पहुंच जाएंगे, और अगर आप 180 डिग्रीज मुड़ जाएं सीधे रास्ते से तो फिर आप उल्टे रास्ते की तरफ पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो गलत रास्तों की कोई लिमिट नहीं, सीधा रास्ता एक ही रास्ता है। अब इसका मतलब क्या है कि सीधा रास्ता एक ही रास्ता है? एक माशाल्लाह आलिम दीन आए थे नौजवान, पढ़ पढ़ा करके, हम अमेरिका में रहते थे तो इंडिया से पढ़ करके आए थे वो, तो वो हमारे एक बुजुर्ग मशायख में से एक शेख साहब ना, उनके पास बैठ करके जो है ना वो एक तरह सा एतराजी माइंडसेट लेकर के आए थे तसव्वुफ के ऊपर, ठीक है। तो पता नहीं क्या पढ़ करके आए थे, बहरहाल वो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ना, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्ना अल्लाह लमा अल मुहसिनीन। तो इस आयत में तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हमारे वल्लदीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उसको जरूर बिल जरूर अपने तक पहुंचने के रास्तों पे चला देते हैं, रास्तों को हमवार कर देते हैं। तो अब यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते मुराद हैं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ना, सबील तो नहीं फरमा रहे, सुबुलना फरमा रहे हैं। तो सुबुल जो है वो तो सबील की जमा है, यानी रास्ते, मल्टीपल पैथ्स, ठीक है ना। तो मल्टीपल पैथ्स जो हैं तो वो तो फिर इसका मतलब ये हो ना कि अल्लाह ताला के कई रास्ते पहुंच पहुंच सकते हैं। तो आप फिर लोग कहते हैं कि नहीं जो है ना वो तज़किया नफ्स का रास्ता जो है यही अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला रास्ता है, और फिर वो दूसरों का तो नहीं जिक्र कर रहे थे कि तबलीगी भाई कहते हैं कि हमारा रास्ता ही पहुंचाने वाला है, और मदरसे वाले कहते हैं हमारा ही रास्ता पहुंचाने वाला, यानी अजीब कस्म की, वो कन्फ्यूज कस्म के नौजवान थे बेसिकली, मैं सुन रहा था बैठ करके उस वक्त, जूनियर ही थे। मैंने कहा यार ये क्या पढ़ पढ़ा करके आए, और बस पहले से ना माइंडसेट बना करके आते हो ना, जो अभी परसों तरसों बात भी हुई थी कि किसी शेख के पास आते भी हैं ना तो वो तनकीद की नज़र से आते हैं, और ये ज्यादातर कौन लोग करते हैं ये वाली हरकत, जो कहीं से सनद लेकर के आए होते हैं, किताबें पढ़ करके और सर्टिफिकेशन लेकर के, है ना, सनद लेकर के जो आए होते हैं ना, उनकी ज्यादा ये एटीट्यूड होता है कि वो तनकीदी निगाह से जो है ना वो देखते भी हैं और तनकीदी जो है ना वो बातें भी करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब भाई वो मुराद यहाँ पर नहीं थी जो आप समझ रहे हैं, सिरात मुस्तकीम एक ही है, ठीक है। और वो सिरात मुस्तकीम एक क्या है, कौन सा वाला सिरात मुस्तकीम, ठीक है ना, वो है कि वमा अलैना व असहाबी, वमा अला अना व असहाबी, ठीक है। कि जिस रास्ते के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा थे, ये एक ही रास्ता। अब वो एक रास्ते से क्या मुराद है? आमाल नहीं, आमाल नहीं कि नमाज जो है ना वो ऊपर हाथ बांध करके पढ़ रहे हैं या नाफ पे हाथ बांध करके पढ़ रहे हैं, तो ये तो मुख्तलिफ रास्ते हो गए। एक रास्ता हो गया कि रफा यदैन कर रहे हैं, दूसरा रास्ता ये हो गया कि नमाज में रफा यदैन नहीं कर रहे हैं, एक रास्ता ये हो गया कि जो है ना वो वितर जो है वो 3 रिकत पढ़ रहे हैं, और एक रास्ता ये हो गया कि वितर जो है वो सिर्फ 1 रिकत पढ़ रहे हैं और 2 रिकत अलग से पढ़ रहे हैं। ये रास्ते नहीं है, ये रास्तों का इख्तलाफ नहीं है, ये इख्तलाफ मुराद नहीं है यहाँ पर। एक रास्ते से मुराद ये है अकीदा, सोच और फिक्र, अकीदा ईमान। ये जैसा सहाबा का ईमान था ना वैसा ईमान लेकर के आओगे। क्या मतलब? कि अल्लाह के बारे में वैसे ही नजरिया रखोगे जैसा कि सहाबा का नजरिया था, रसूल के बारे में वैसा ही नजरिया रखोगे, आइडियोलॉजी रखोगे जैसा कि सहाबा की आइडियोलॉजी थी। ये अलग अलग नहीं थी कि एक सहाबी की डिफरेंट आइडियोलॉजी है रसूल के बारे में, दूसरे की डिफरेंट आइडियोलॉजी है रसूल के बारे में, और किसी की कयामत के बारे में डिफरेंट नजरिया है, किसी का कयामत के बारे में कुछ और नजरिया है। ये नहीं था, एक ही नजरिया था अल्लाह के बारे में, कयामत के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, राइट, हिसाब किताब के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, एक ही नजरिया था सबका। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो वो जो नजरिया है ना, वो नजरिया लेकर के तुम आओगे तभी तुम कामयाब होगे। यही है सिरात मुस्तकीम, और ये एक ही है, ये एक ही है, ठीक है? तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये फरमा रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम जो है ना ये एक ही है, नूर एक ही है, क्योंकि नूर इज इक्वल टू सिरात मुस्तकीम। अच्छा, यहां ये बात भी काबिल गौर है कि आसमान और जमीन के बनाने को लफ्ज खलका से ताबीर किया गया है, और अंधेरे उजाले के बनाने को लफ्ज जाला से, ठीक है, खलका समावाती वन अर्दा व जाला जुलुमाती वन, ठीक है, खलका जुलुमाती वन नूर नहीं फरमाया, और ना जाला समावाती वन अर्द यहां पे फरमाया, ठीक है। तो इसमें इस तरफ इशारा है कि अंधेरा और उजाला आसमान और जमीन की तरह मुस्तकिल कायम बिजात चीजें नहीं है, यानी जिसको मंतिक की जुबान में जौहर कहते हैं ना, यानी मटेरियल, राइट, अंधेरा और उजाला ये कोई मटेरियल ऑन इट्स ओन नहीं है, ठीक है, बल्कि अवारिज और सिफात में से है। अवारिज ये लफ्ज आरजी से निकला, उर्दू जबान में भी हम आरजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, टेम्प्ररी, ठीक है, तो ये आवारिज हैं, ये टेम्प्ररी चीजें, ये आती हैं जाती हैं, दे आर नॉट लाइक फिक्स्ड विद समथिंग, ठीक है, यानी फिक्स्ड विद नहीं, ये दे आर नॉट फिक्स्ड थिंग्स, जैसे कि पत्थर या दरख्त, नबातात, जमादात, हैवानात, राइट, ये सारी फिक्स चीजें हैं ना, ये अंधेरा उजाला ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि ये एक तरह से सिफात हैं, ये अवारिज हैं, टेम्पररी, आती है जाती हैं, और जुलुमात आसमान और जमीन जो है ये फिक्स चीजें हैं, जमीन की एक फिजिकल हैयत है, आसमान की एक फिजिकल हैयत है, ठीक है। अच्छा, इस फिजिकल हैयत से ये भी वैसे अंदाजा होता है कि ये जो एटमोस्फेरिक लेयर्स है ना, ये दरअसल वो आसमान नहीं है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलक समावाती वल अर्द के अंदर जिक्र किया है, ठीक है, ये वो वाले आसमान नहीं है, क्योंकि ये जो एटमोस्फेरिक लेयर्स है ना, दे आर एक्चुअली, इनकी अपनी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये तो गैसियस लेयर्स की वजह से क्लासिफिकेशंस हैं खाली, ठीक है, गोया के ये ट्रोपोस्फेयर, आइजोनोस्फेयर और ये सब जो स्फेयर्स हैं, ये भी गोया के एक तरह की सिफात ही हैं, यानी नॉन फिजिकल चीजें हैं ये, ठीक है ना, असल में तो गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे इतने ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पे इतने कम हो जाते हैं, वहां पे इतने ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो ये तो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, आसमान इटसेल्फ के थोड़ी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमानों का जिक्र किया है, ये तो फिजिकल बॉडीज हैं बाकायदा, है ना, जैसे कि हमारे ऊपर एक छत होती है, घर की जो छत होती है आपके ऊपर, जो कमरे की छत है, ये कमरे की छत जो है वो कोई गैसेस तो नहीं है ना, ये कोई हवाएं तो नहीं है ना, ये तो बाकायदा कंक्रीट की और पत्थर की और ब्रिक्स की बनी हुई छत है ना। तो अगरचे कि वो एक छत की शक्ल में है, आपको उसने सराउंड किया हुआ है, अगर दीवारों को भी उसमें शामिल कर लें, गोया कि एक 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 बॉल है, आप कमरे में एक 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 जो कमरे में बैठी हुई है या बैठे हुए हैं, तो आप एक क्यूब के अंदर बैठे हो, क्यूब में, इस क्यूब, क्यूब समझते हैं ना, जिसका काबतुल्ला एक क्यूब है, राइट। आइस क्यूब्स होती है ना औरतों को ज्यादा, जो है वो आइस क्यूब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है, तो उसको क्यूब कहते हैं। आप उस क्यूब के अंदर हैं, सराउंडेड हैं आप एक दीवार से या एक जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर से, आप सराउंडेड हैं, ऊपर भी, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, आगे भी, पीछे भी और नीचे भी। तो आसमान की लगता है कि इस किस्म की एक फिजिकल हैयत, ठीक है ना, ये गैसेस नहीं है आसमान, फिजिकल हैयत वाली कोई चीज है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान तक जब पहुंचे, तो दरवाजा था उसका, दरवाजे को खटखटाया, उस दरवाजे के पीछे से फरिश्ते ने पूछा कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं हूं और मेरे साथ जो है वो अल्लाह के नबी हैं। उस फरिश्ते ने दरवाजा खोला, तब जो है वो उस आसमान में दाखिल हो, यानी गोया के छत के ऊपर गए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमें इन साइंसदानों की किसी भी बात से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, और सब मुसलमानों को होना लाजमी है इस बात के ऊपर, ठीक है। बहरहाल, तो अंधेरा उजाला इस किस्म की चीज नहीं है। आगे फरमाते हैं कि जुलुमात को नूर पर मुकद्दम शायद इसलिए जिक्र फरमाया गया कि इस जहान में असल जुलुमात है। अजीब, इस जहान की बाई डिफॉल्ट जो 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 कैफियत है ना, वो जुलुमात की कैफियत है, यानी अंधेरे, ठीक है। जैसे स्पेस के बारे में इतना तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी हर बात के से इख्तलाफ करने की, अगरचे के काफिर हैं, अगरचे के बेवकूफ हैं, लेकिन इन्होंने अपने टेलीस्कोप से स्पेस के बारे में जो चीजें बताई हैं, अब हम खामा खा तो नहीं हर चीज को, बस ऐसी जिद तो नहीं है ना हमें कि हम उनकी हर चीज का इनकार करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो हम उनका इनकार नहीं करते, हाँ भी ठीक है, स्पेस है, स्पेस जो है वो डार्क है, ठीक है। मा अना अलैहि व असहाबी, जज़ाकुमुल्लाह, अच्छी तलाश कर ली हदीस के बाद, वो पीछे जो बात हो रही थी उसके बारे में इन्होंने हदीस यहाँ पे मर्दों की क्लास में नकल कर लिया जी। तो ये जुलुमात असल है, ठीक है, और नूर खास खास चीजों से वाबस्ता है, जब वो सामने होती हैं तो रोशनी पैदा होती है, जब नहीं होती तो अंधेरा होता है, ठीक है ना। बहुत ही आम ऑब्जर्वेशन है, सूरज होता है तो रोशनी होती है, जब सूरज छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, बल्ब जल रहा होता है रात को कमरे के अंदर, जब बल्ब जलता है तब रोशनी होती है, वरना कमरे में अंधेरा होता है। अंधेरा करने के लिए तो कोई बल्ब नहीं है ना, कि कोई अंधेरा वाला बल्ब है कि वो जलाएंगे तो अंधेरा होगा वरना जो है वो रोशनी रहेगी, ऐसा कोई बल्ब कभी किसी ने देखा? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, तो है भी नहीं, और ना जो है वो कोई ऐसा अंधेरे वाला बल्ब बना सकेगा शायद, ठीक है। तो रोशनी के लिए बल्ब है, रोशनी के लिए सूरज है, ठीक है। देखें, नूर असल नूर किधर से है? अल्लाहु नूर उस समावाती वल अर्द, ठीक है, अल्लाहु नूर उस समावाती वल अर्द। तो अल्लाह ताला ने ना अपने लिए जो मकाम बनाया ना, वो तो है अर्श के ऊपर का, तो अब अर्श के नीचे जो है वहां पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वैसे तो नहीं पहुंच रहा ना, तो अल्लाह ताला ने नीचे का सारा मामला अंधेरा रखा, उसमें फिर अपनी तरफ से जिसको जो नूर अता फरमाया, तो फिर वो नूर जो है वो जलता है, तो फिर रोशनी होती है, जिसको अता नहीं करते वो नूर, वो नहीं जलता, उसे रोशनी नहीं होती, यानी अंधेरा रहता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट इज अंधेरा, नूर को अपने पास रखा, जिस जिसको नूर दिया वहां पे रोशनी होगी वरना नहीं होगी। अच्छा, मकसद इस आयत का तौहीद की हकीकत और उसकी वाज़ह दलील को बयान फरमा कर दुनिया की उन तमाम कौमों को तंबीह करना है जो या तो सिरे से तौहीद की कायल ही नहीं, या कायल होने के बावजूद तौहीद की हकीकत को छोड़ बैठी है, ठीक है ना। सिरे से तौहीद की कायल नहीं, यानी बहुत सारे खुदाएं इसकी कायल हैं, या ये कि कहती हैं हाँ खुदा तो एक ही है, लेकिन ये जो लेकिन है ना, बट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये बट जो है ना उसने उनको बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा भी है, तो इस एक आयत के अंदर अभी तक हमने खाली एक ही आयत पढ़ी है और वो भी उसका आखिरी हिस्सा अब पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में फिर फरमाते हैं मजीद तफसील कि मजूस, मजूसी, फायर वर्शिपर्स हमारे यहाँ जो है ना, अब उनको मजूसी नहीं कहते, पारसी कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर। तो मजूस जो है वो दुनिया के दो खालिक मानते हैं, यजदान और अहरमन। यजदान को खालिक खैर और अहरमन को खालिक शर करार देते हैं। इसी वजह से फारसी जुबान जो है ना, चूंकि ईरान के अंदर ये मजूस जो है ना वो मजहब राइज था, ठीक है, इस्लाम आने से पहले मजूसी, तो अब फारसी जुबान चूंकि ईरान की जुबान है, ईरानी उस इलाके की, तो अब उसके अंदर जो है ना वो खुदा के लिए यजदान का लफ्ज इस्तेमाल। तो अब मुसलमान भी जो है वो चूंकि खुदा के लिए यजदान का लफ्ज उनकी जुबान में इस्तेमाल होता, तो महबूब यजदान है, हमारे मरहूम जुनेद जमशेद साहब का एक नात भी है, या एक मतलब हम्द भी है, महबूब यजदा, ठीक है। तो यजदा का लफ्ज जो है फिर मुसलमानों ने अल्लाह के साथ उसको, जैसे खुदा का लफ्ज है, खुदा भी अरबी का जुबान, अरबी जुबान का तो लफ्ज नहीं है, फारसी जुबान का लफ्ज है, ठीक है। तो अब खुदा जो है अल्लाह के लिए खाली इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कोई खुदा है ही नहीं, तो यजदान भी इस तरीके, इस अकीदे के साथ यजदान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली यजदान जो है ना वो आधे खुदा का नाम, यानी खुदाइयत में जो आधा शरीक था ना वो उसको यजदान कहते थे, और अहरमन जो है वो बाकी आधे को कहते थे, जो कि शर वाला खुदा था ना उसका। और यजदान को खालिक खैर और अहरमन को खालिक शर करार देते हैं, और उन्हीं दोनों को नूर और जुलुमात से भी ताबीर करते हैं, ठीक है। अब शैतान ने उनको ऐसे गुमराह किया कि उन्होंने जो है ना वो इतना ज्यादा गुमराही में बढ़ गए कि बिल्कुल 50-50% कर दिया अल्लाह ताला को, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, ताला के तसव्वुर को 50-50% कर दिया। अल्लाह को तो कोई कर नहीं सकता, अल्लाह के तसव्वुर को जो उनके जहनों में था उसको 50-50 में डिवाइड कर दिया, नूर को अलग और जुलमात को अलग। अच्छा, हिंदुस्तान के लोगों को कैसे गुमराह किया शैतान ने, तो हिंदुस्तान के मुशरिक 33 करोड़ देवताओं को खुदा का शरीक बताते हैं, 33 करोड़, ठीक है। तो हमारे एक दोस्त जो है वो, उनके साथ प्रोफेसर है कोई हिंदू, तो उसने तो उनको खैर 3.5 करोड़ खुदा बताया था, यहाँ पे हजरत ने 33 करोड़, ये उन्होंने दूसरे एक पर्सपेक्टिव से शायद बताया हो, वो किसी और पर्सपेक्टिव से बता रहा था। खैर 3 करोड़ हो या 35 करोड़ हो, जितने भी हैं करोड़ों तो है ना। तो आर्या से अजी हिंदुओं का मामला है, आर्य, अच्छा हिंदुओं में ना यही मामला है, ठीक है। तो कल भी बात हुई थी ना इसके ऊपर कि बेनिफिट मिलता है, तो वो जिस चीज से बेनिफिट मिलता है उसको खुदा बना लेते हैं, जैसे हमने भी जो है वो काफी इस तरह के बनाए हुए हैं, फायदा पहुंचता है उसको भी खुदा बना लेते हैं। हिंदुओं ने जो है वो बिच्छू बिच्छू और मच्छर मक्खी को भी जो है वो फायदे की चीज देखा, तो उसको भी जो है वो खुदा बना लिया। तो फिर जो है ना वो शायद क्लास सुन करके ही या वैसे ही जो है वो किसी तालिबा ने मैसेज किया कि जी वो किसी ना इंस्टीट्यूट जाती हैं तो वहाँ पर तालीम वगैरह होती है, तो कल उनके यहाँ जो है ना वो कोई हिंदू खातून आकर के बैठ गई और खुद ही जो है ना वो तालीम के अंदर सुनना शुरू हो गई, और उन्होंने जो है वो अपने सर को भी ढक लिया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको, आ जाए भी बैठे हैं, कोई मना ही किसी ने नहीं किया। तो अब वो आकर के बैठ गई और उसने कहा फिर बाद में कि मैं तुम्हारे खुदा को भी वैसा ही मानती हूँ जैसे मैं भगवान को मानती हूँ, ठीक है। तो बड़ा यानी पता नहीं वो अल्लाह खैर करे, वो कहीं आरएसएस की कोई एजेंट तो नहीं थी, इसका भी वैसा आजकल इहतमाल है, कल को जो है ना वो कुछ और ही गड़बड़ ना कर दे, लेकिन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके हमें अपना काम करते रहना चाहिए, अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, तो इतना वहमी होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, तो अब उन्होंने हमें लिखा कि वो खातून आ गई हैं, तो हमने तो अभी तक उनको कुछ नहीं कहा है, तो हम उनको दीन की तरफ कैसे दावत दें, ठीक है। तो मेरे तो समझ में नहीं आया पहले, लेकिन अल्लाह ताला फिर मेहरबानी फरमाते हैं, सवाल करने वाला अगर इखलास से सवाल करे, अच्छा सवाल करे, तो फिर जवाब भी अल्लाह ही की तरफ से आता है, ठीक है। तो हमने फिर उनको एक तो अपनी टिपिकल बात बता दी कि भाई कुरान मजीद का तर्जुमा जो है ना उनको पढ़ने के लिए दे दें। फिर दूसरी बात जो है ना, वो जवाब लिख ही रहे थे तो अल्लाह ने नजीब डाली कि उनको जो है ना वो आप इस शेर के जरिए से दावत दें इस्लाम की तरफ, ठीक है ना, उस शेर के जरिए से जो कि आप लोगों की क्लासों के अंदर भी काफी, हमने अपने हजरत सी से वो शेर सुना था, तो जब कभी तफसीर में ऐसा मौका आता है तो उस शेर को हम सुनाते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को भी याद दिलाते हैं, जिसमें क्या फरमाया, बड़ा प्यारा शेर, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं वया के वास्ते, यानी रोशनी के वास्ते, बहरो बर शमसो कमर माहो शुमा के वास्ते, राइट। ये शम्स और कमर जो हैं, ये महीने कैसे आएंगे कैसे खत्म होंगे, ये शम्स और कमर की बुनियाद पर, और हम शुमार करते हैं महीनों को अपने, ये इस काम के लिए है, ये जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है, तू इस जहान के लिए नहीं है, ये जहान तेरे लिए यानी तेरी खिदमत के लिए है, राइट, तेरे काम आने के लिए जहान है, ठीक है, और तू किसके लिए है, तू तो सिर्फ अल्लाह के वास्ते, जिसने इन सबको बनाया तेरे लिए, ठीक है। तो हिंदू को अगर आप समझे कि भाई वो क्या कुरान मजीद समझ उसको पढ़ेगा, तफसीर भी कहाँ से उसको समझ में आएगी, क्या ये वो वगैरह जो भी, वो अपने तौर पे कोई अल्लाह ताला किसी को किसी रास्ते पे डाल दे तो ठीक है, अल्लाह ताला किसी भी जरिए से उसको बात समझा देंगे, लेकिन हम, हमारा काम क्या है जी, पूछे टेस्ट पे छोटा सा क्विज, फिर हमारा काम क्या है जी, हमारा काम है नाउज बिल्ला क्या कर देना, डंप कर देना मोटी सी किताब कोई, या खूब सारा तर्जुमा उठा करके लो जी जाओ अल्लाह के हवाले, ये हमारा काम है करने का, ठीक है। तो हमारा काम क्या है करने का, बलागुल मुबीन, एग्जैक्टली बलागुल मुबीन, ठीक है ना। तो अब बलागुल मुबीन में शर्त क्या क्या हमें देखनी है कि अगले बंदे के हिसाब से बात करें ना, उसकी लेवल के मुताबिक बात करें, उसकी जो उसको समझ में भी आए, ठीक है ना। तो अब उसको तो अगर उर्दू जुबान आती है तो ये शेर जो है ना, ये उसको उसके अहवाल के हिसाब से कि भाई तुम जिसको भगवान कह रही हो, तुम जिसको अल्लाह के बराबर एक दर्जा दे रही हो, बेशक तुम अल्लाह को भी इज्जत दे रही हो, तुम कह रही हो ना कि तुम्हारा खुदा भी मेरे नजदीक उतना ही अहम है जितना कि भगवान है, वो भाई भगवान और खुदा के दरमियान क्या मुकाबला, भगवान कोई होगा अच्छा बंदा जिसने कोई बेनिफिट पहुंचाया होगा लोगों का, उसका नाम तुम लोगों ने भगवान रख दिया है, अब तुम उसकी इबादत करना शुरू हो गए हो, अब उसके सामने तुम अपने आप को झुकाना शुरू हो गए हो, और उसके जो मजावर होते हैं उनकी बातें, भगवान तो बोलता कुछ नहीं है, वो तो मर गया पता नहीं दुनिया से चला गया, उसके मजावर तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम उनकी बात मानना शुरू कर देते हो, तो ये दोनों बराबर नहीं है भाई, वो तो तुम्हारी खिदमत के लिए सारी की सारी, भगवान ने तुम्हें कहा, भगवान के मजावर ने तुम्हें कहा कि तुम जो है वो चूहे की परस्तिश करो, तो तुमने चूहे की परस्तिश करनी शुरू कर दी, उसने कहा कि तुम जो है वो फलाने मखलूक की परस्तिश करो, तुमने उसकी परस्तिश करनी शुरू कर दी, भाई वो तो तुम्हारी परस्तिश के लिए थे, वो तो तुम्हारी खिदमत के लिए थे, राइट। तो इस तरीके से अल्लाह करे अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में हिदायत लिखी होगी तो शायद बात समझा भी पाएंगे और उनको समझ में भी आ जाए, कस्टमाइज मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, ठीक है, बलागुल मुबीन को अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा। इन्होंने लंबा सा एक सवाल लिखा था, क्या है कि व्हाट वाज द आंसर गिविंग टू दैट यंग आलिम बेस्ड ऑन योर एक्सप्लेनेशन, इज दिस ए गुड अंडरस्टैंडिंग दैट वन मेजर अकीदा इज दैट लीविंग सिन इज फर्ज एंड हेंस एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिरात मुस्तकीम, यानी लीविंग सिन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिरात मुस्तकीम, इट कैन बी ओनली अचीव्ड बाय तसव्वुफ। नहीं, ये कोई उन्होंने वो तो खैर बेचारे उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था उसको बात समझ में आ रही थी, लेकिन आप भी ऐसी कोई कोशिश ना करें, किसी को तसव्वुफ जो है ना वो खामखा में सल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तसव्वुफ को सल करने की, ठीक है। तसव्वुफ क्या है, ये एक नाम है बगैर हकीकत के, राइट। तो एक नाम बगैर हकीकत की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के लिए कोई फायदा नहीं है, इसको सेल करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, हकीकत को समझें, हकीकत को सेल करें, ठीक है, हकीकत शैतान के खिलाफ, यू नीड ए लाइव शेख अगेंस्ट ए लाइव शैतान, ठीक है ना, ये अगर आप समझ जाएं और इसको समझा दें इतना काफी है तसव्वुफ के लिए, ठीक है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टर्मिनोलॉजी सेल करने की हरगिज कोई जरूरत नहीं। एनीवे आगे चलें, टाइम कितना रह गया है, 1 मिनट, अच्छा तो हिंदुओं की बात आई थी तो फिर वो उनका मैसेज याद आ गया, आर्य समाज तौहीद के कायल होने के बावजूद रूह और मादा को कदीम और खुदा ताला को कुदरत व खलकत से आजाद करार देकर तौहीद की हकीकत से हट गए। ठीक है, आर्य समाज ये इंडिया में ही रहने वाला एक बहुत बड़ा एक मजहब है। आर्य समाज बड़ा अपने किताबों में पढ़ा इसका नाम। तो इन्होंने क्या कहा, यानी शैतान ने इनको कैसे गुमराह किया कि खुदा है तो ठीक है ना, लेकिन खुदा ने जो है ना वो मादे को तखलीक नहीं किया, ना मादे को तखलीक किया ना रूह को तखलीक किया, बल्कि ये पहले से मौजूद थी। कदीम होने का मतलब क्या है कि हमेशा से कोई चीज मौजूद, उसको कदीम कहते हैं। तो कदीम तो सिर्फ अल्लाह की जात है, उर्दू वाला कदीम नहीं यानी एंशंट नहीं, बल्कि हमेशा से। ये बड़ा टेक्निकल अकीदे का लफ्ज है कदीम। ठीक है, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया शैतान की बात मान करके, भाई रहमान के बंदे हमेशा, अल्लाह ताला ने हमेशा मौजूद रखे, जो कि सही अकीदे के ऊपर रखने की लोगों को हमेशा मेहनत करते रहे। लेकिन शैतान भी मेहनत करता रहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है बल्कि ये नहीं, वैसे भी ठीक है और हर्जी क्या है और ये भी कर लो तो अच्छी बात ही तो है ना, मैं कौन सी तुम्हें जो है वो बुतों को पूजा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं कह रहा बुतों की पूजा करो, है ना। अब ये देखो ना, ये जो रूह है और ये जो बदन है, तो अब ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं और इतनी अजीम चीजें हैं, तो ये हमेशा ही सही है ना, तखलीक वखलीक की क्या इनको जरूरत थी। इस तरह की ना उल्टी सीधी वो गोल घुमा फिरा करके, तो अब इन लोगों ने की गलती क्या करी, इन्होंने जो है वो रहमान के बंदों की बात नहीं मानी, इन्होंने शैतान की बात मान ली। कल भी बात हुई थी, रहमान के बंदों की बात नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही शैतान के हवाले करेंगे वो तुम्हें। ठीक है ना, अल्लाह ताला की तो आवाज ना पहले आती थी ना अब आई, ना अब आती है और ना जो है वो बाद में आएगी। अल्लाह की आवाज वो तो क्यामत के दिन आएगी, दुनिया में तो अल्लाह की आवाज नहीं आने वाली है, तो फिर हिदायत कहाँ से आएगी, बंदों के जरिए से, जो कि नबियों की शक्ल में आते थे और नबियों के बाद नबियों के वो रसा की शक्ल में। ठीक है ना, उन बंदों की मानने पर अल्लाह ताला जो है वो अपना कुर्ब अता फरमाते हैं, उन बंदों की ना मानने के ऊपर अल्लाह ताला शैतान के हवाले फरमा देते हैं। दिस इज द सिंपल इक्वेशन बस। ठीक है, अच्छा, तो आर्य समाज वालों ने फिर इस तरीके से शैतान की बात मानी, उसने उसको इन इन बातों में लगा दिया कि जी अल्लाह ताला जो है ना वो तखलीक वखलीक कोई नहीं है, वो पहले से चीज़ें मौजूद है। इसी तरह नसारा तौहीद के कायल होने के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को खुदा ताला का शरीक व सहीम बनाने लगे। शरीक का मतलब तो वही पार्टनर जो पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, और सहीम का मतलब ये लफ्ज जो है इसका मतलब भी यही है, हिस्सेदार या शरीक या उसके जैसा। ठीक है, तो वो फिर नसारा ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को खुदा ताला का, और फिर अकीदा तौहीद को थामने के लिए है ना, अकीदा तौहीद भी पकड़ के रखना है और इधर भी मैरी को और जीसस को भी पकड़ के रखना है, अब सबको एक साथ कैसे पकड़े। ठीक है ना, तो अब शैतान ने ना इनको कहा कि कोई बात नहीं, तुम सबको जो है ना वो साथ लेके चल सकते हो, जैसे हमें शैतान ने किस तरह से फंसाया है, हमें कैसे फंसाया है, सबको साथ लेके चल सकते हो, तो हमें फंसाया है कि दीन दुनिया साथ साथ। ठीक है ना, मौलवी ने आग लगाई, मौलवी खामखा ही कहता रहता है कि दीन पीछे, दीन आगे है, दुनिया पीछे होनी चाहिए, राइट। मौलवी की बात छोड़ो, तुम मौलवी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, दीन दुनिया साथ साथ लेके चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे साथ लेके चलना है। हमने मान लिया शैतान की बात, और हम साथ साथ लेने के चक्कर में हम भी उसी तरह से कंफ्यूज हैं, तकरीबन उतने, बिल्कुल उतने नहीं लेकिन तकरीबन वैसे ही कंफ्यूज हैं जैसे कि ईसाई। ईसाई ने कहा तुम्हें बड़ी मोहब्बत है ना, शैतान ने कहा ईसाई को कि तुम्हें ईसा से बड़ी मोहब्बत है ना, और तुम्हें जो है ना वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से भी बड़ी बड़ी मोहब्बत है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम सबको साथ कैसे लेके चल सकते हो। तो उसने फिर इनको क्या बताया, लकद कफर अल्लज़ीन कालू इन अल्लाह सालिसु सलाथा, है ना, कि जिन लोगों ने कहा ना कि अल्लाह ताला जो है ना वो तीन में से एक है, तीन में से तीसरा है, तो उन्होंने कुफर किया, उन्होंने नबी की बात का इनकार कर दिया, नबी ने तो ये बात नहीं कही थी। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनकी वालदा को खुदा ताला का शरीक उस, अच्छा, अब फिर अकीदा तौहीद को थामने के लिए उनको एक तीन और तीन एक का गैर माकूल नजरिया इख्तियार करना पड़ा। ठीक है, गैर माकूल यानी जो कि अकल के बिल्कुल ही खिलाफ, ये नहीं कि दीन की हर बात आपको अकल में समझ में आ जाती है, क्योंकि अकल जो होती है महदूद होती है, लेकिन ये जो बात है ना, ये जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, तो ये तो किसी की भी अकल में आने वाली बात नहीं। असल बात वही है कि शैतान ने उनको बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा? अच्छा, आपकी अमानत आपकी सेवा में, किताब मौलाना करीम सिद्दीकी साहब की हिंदू के लिए, कई लोग ईमान में दाखिल हुए। हाँ बिल्कुल, जज़ाकुम अल्लाह, मेरे जहन में नहीं आई थी, हमारे पास भी मौजूद है और कभी कभी बीच में से हमने पढ़ा भी है उसको, बहुत अच्छी किताब है और उसकी कई जल्दें बल्कि अब तो आ चुकी हैं, तो हिंदुओं को दावत देने के लिए बहुत अच्छी सुनाए किताब है ये। ठीक है, जज़ाकुम अल्लाह खैर। अच्छा, नसीमे हिदायत के झोंके, इसमें हाँ नसीमे हिदायत के झोंके ये भी हमारे पास है बल्कि, तो इसमें जो है बहुत सारा के पर्सनल वाक़े आते हैं। बहरहाल ये हमारा काम है बात आगे पहुंचाना, फिर हिदायत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। एक ज़माने में ना, जब सितंबर 11 हुआ था ना अमेरिका में, तो उस वक्त बड़ा मुसलमानों में टेंशन फैल गई थी कि पता नहीं क्या होगा, सबको पकड़ के मार देंगे और पता नहीं क्या होगा, तो हम उस वक्त बड़े आसमानों पे उड़ रहे होते थे। तो हमने कहा बिल्कुल फिक्र ना करें आप लोग, बस सब सारी किताबें मौजूद हैं, और जो है ना वो कन्वर्टेड मुस्लिम विमेन के ऊपर ज़बरदस्त किताबें जो है वो क्या नाम है उसका, मेरे पास है तो नाम याद नहीं आ रहा, उसमें जो है ना बहुत सारी, म्यूट कर दें, तो उसके अंदर कॉन्वर्ट मुस्लिम विमेन की जो है ना वो एक से एक जो है वो दास्तानें मौजूद हैं, और हर दास्तान जो है वो ऐसी इंस्पायरिंग है, और उसके अलावा इतनी सारी जो है वो माशाल्लाह मेहनतें हो रही हैं अमेरिका के अंदर, तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सितंबर 11 हो गया तो क्या हो, क्या हो गया, अभी तो बस अमेरिका सारा का सारा कन्वर्ट होने वाला है, सब मुसलमान हो जाएंगे, फिर सब बिरयानी खाएंगे बैठ करके, ठीक है। लेकिन हिदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। किताबें सब अपनी मौजूद थी, और जो है ना वो जो कन्वर्ट हो रहे थे बहुत थोड़ी तादाद में हो रहे थे, बहुत सारे तो वापस ही चले जाते हैं बल्कि कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है ना। इंडिया में तो फिर मार मार के वापस ले आते हैं, अमेरिका में तो कोई मारने वाला नहीं होता फिर भी वापस चले आते हैं, मुसलमान ही मार मार के धक्का देके उनको वापस भेज देते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से। तो बहरहाल हम, हमारा काम है मेहनत कर, ठीक है ना। जिस वक्त अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले होंगे उसी वक्त हिदायत मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली, ना उसके बाद मिलने वाली है, उस वक्त मिलेगी। इस यकीन के साथ जो है ना वो दाई की नजर हमेशा अल्लाह के ऊपर, असबाब के ऊपर नहीं, किताबें बन गई हैं और अच्छी किताबें आ गई हैं और ये हो गया है वो हो गया है, नहीं, नजर हमेशा अल्लाह के ऊपर होनी, ये लाजिम है। बस यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, माफ कीजिएगा, इनसे कहा था कि तौबा कलमात पढ़ा देंगे, तो बस तौबा कलमात के लिए 2-4 मिनट अगर आप और रुक जाएं, कुछ शायद खवातीन आई हुई हैं पढ़ने के लिए, 1 मिनट। क्या रमजान में कोई भी चीज खरीदने का हिसाब नहीं होता, क्या ये सही है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं सुना, अल्लाह आलम। अच्छा, तो कुछ लोग तौबा की कलमात या बैत की नीयत से आए हुए हैं, तो जिसकी जो नीयत होती है, जो बैत की नीयत से पढ़ना चाहता है, तो उसको जो है वो बैत का ताल्लुक मिल जाएगा, और जो सिर्फ तौबा की नीयत से पढ़ना चाहता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लें, उसको तौबा नसीब हो जाएगी। तो दिल की अपनी नीयत को मुस्तहजर करके, अपने जहन में गोया के सामने ला करके, फिर इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ توبہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرما لے اور اس کے اوپر قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ